गुड मॉर्निंग। आज हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर श्रीमन साहू जी उपस्थित हैं। आप यहाँ के वरिष्ठ भ्राता हैं, अनेक सालों से आप बाबा की गैंग में चल रहे हैं और मैं तो कहूंगा आप देश विदेश हर जगह जगह जाकर आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के कोर्सेज कराते हैं कि अनेक जो बीमारियां इस समय बढ़ रही है उनको अगर कंट्रोल करना है तो हमारे लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं। इस बारे में आप हर जगह जगह जाकर मार्गदर्शन करते हैं। आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज आप यहाँ पर हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं, तो आदरणीय भ्राता जी से हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में सुनेंगे। नमस्कार।
खड़ा है कि कराओ बैठना नहीं, बैठना मुझे ऐसा नहीं लगता है।
ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
सवेरे सवेरे नाश्ता नहीं हुआ है इसलिए आवाज थोड़ा, कोई बात नहीं, यहाँ ऐसे भी जोर से आवाज करना मना है ना, नहीं शांति का परिवेश है। बहुत अच्छा लगा सवेरे सवेरे। देखो मैं बॉम्बे जाता हूँ तो इतने भाई बहनों को मिल भी नहीं पाता, लेकिन आज मैं कहूंगा मेरा सौभाग्य है, आज पूरा इतने सारे मेरे भाई बहनों को देख रहा हूं। जीवन क्या है? जीवन एक यात्रा है, जन्म से मृत्यु तक, है ना नहीं? और किसकी यात्रा सफर लंबी है या किसकी छोटी है? इंग्लिश में बहुत एक सुंदर कहावत है, इट इज बेटर टू बी एन लिली देन टू बी ए ओक ट्री। एक लिली फ्लावर एक दिन में पैदा होके खुशबू फैलाके सुंदरता को सबको दिखाकर एक दिन में मुरझा के चढ़ जाता है, मर जाता है, लेकिन एक ओक ट्री कितने सौ साल तक जिंदा रहता है, लेकिन कोई फल नहीं, कुछ नहीं, खुशबू नहीं, कुछ नहीं। तो इंग्लिश में कहावत है, इट इज बेटर टू बी ए लिली देन टू बी एन ओक ट्री। लेकिन मैं कहूंगा कि जीवन ओक ट्री जैसा भी हो लेकिन लिली जैसा खुशबूदार भी साथ साथ हो और दूसरों को फल भी दे सके, अच्छा है ना? तो जीवन में एक होता है दीर्घायु रहना, लंबे उम्र तक जीवित रहना, परंतु जीवन में कोई गुण नहीं, कोई खुशबू नहीं, लोग हमको देखते ही थू थू करते हैं, गाली देते हैं, 150 साल भी जिंदा जी के क्या फायदा है? कोई बहुत कम उम्र में चला जाता है लेकिन उसको कितने सालों तक कितने लोग याद करते हैं, आदमी तो ऐसा है ना। परंतु कोई व्यक्ति ऐसा गुणवान भी हो लेकिन ऐसा दीर्घायु भी हो तो सोने पे सुहागा। कौन नहीं चाहता है मैं दीर्घायु रहूं, लेकिन दीर्घायु के साथ साथ कैसे सुंदर जीवन जिए, हमारा जीवन खुशबूदार हो जाए, सबको हम सुख दे सके, खुशी दे सके। वास्तव में अमर दुनिया में कोई होता नहीं, दुनिया में कोई भी आता है तो मरता है, लेकिन देवताओं को अमर क्यों कहा गया है? जैसे आज भी देखो मदर तेरेसा चली गई लेकिन हजारों साल तक मदर तेरेसा को लोग याद करते हैं, कुछ लोग मर जाने के बाद तुरंत ही लोग भूल जाते हैं, उनको कोई याद नहीं करता। तो जो हजारों साल तक सबके मन में याद रहता है वही सचमुच अमर है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमें बाबा अमर बना रहे हैं। कैसे बनेंगे? खाली लंबी आयु होने से तो नहीं हो सकता है, और सदा के लिए तो कोई यहाँ जीवित रह भी नहीं सकता है, परंतु हम ऐसा बने जैसे हमारे बाबा ब्रह्मा बाबा। जानते हैं एक दादी हमारी बता रही थी, बाबा जब बिजनेस समेट करके इसमें जीवन को कुर्बान कर दिए, बहुत समय के बाद उनका एक फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड आए थे घर, और बाबा को कहा, अरे तू पागल हो गया लखी, बिजनेस का क्लाइमेक्स टाइम में जब पूरा इतने जोरदार कमाई होती थी, पागल हो गया क्या, सब छोड़ छाड़ करके इधर आके बैठा है, लेकिन बाबा को पता था कि हीरे जवाहरात क्या है, सब पत्थर है। बाबा अगर अपना जीवन को इस ईश्वरीय मार्ग पर कुर्बान नहीं करते तो आज बाबा को कौन जानता, कौन जानता? आज बाबा घर घर में पूजे जा रहे हैं सारे विश्व में, बाबा एक आध्यात्मिक क्रांति रचा दिए समग्र विश्व में, जो आज घर घर में बाबा का। तो जीवन में एक होता है दीर्घायु रहना, परंतु साथ साथ चरित्रवान हो, गुणवान हो, अनेक लोगों को पथ प्रदर्शन कर मार्गदर्शन दे, सुख शांति देना, जो ताकि सबको, सबके दिल में हम छप जाए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में ये दोनों बातें सिखाई जाती है। बाबा दीर्घायु थे, 93 उम्र तक बाबा को डायबिटीज होते हुए, पता है आपको बाबा को डायबिटीज था? बाबा को डायबिटीज होते हुए भी बाबा को डायबिटीज पाल बीमा का निकल सका। बाबा को ना न्यूरोपैथी हुई जो डंडा पकड़ना पड़ा, बाबा को ना रेटिनोपैथी हुई जो चश्मा पहनना पड़ा। बाबा 6 फुट का हाइट था, स्ट्रेट इरेक्ट, लास्ट तक भी पहाड़ी चढ़ने में नंबर वन। और बाबा का ऐसा फिटनेस था, दूसरे महामंडलेश्वर जैसा इतना बड़ा पेट नहीं था बाबा का, एकदम पतले भी नहीं थे कि मोटू भी नहीं थे, एकदम फिट बाबा। मुझे याद है, आप सभी जानते होंगे, हमारे ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो दिल्ली में है, वहां का डायरेक्टर जो हमारे आशा दीदी हैं, उनके पिताजी पुरी जी, दीदी जानते हैं, पुरी जी अभी शरीर छोड़ दिए हैं, वो साकार बाबा के समय के हैं। वो कह रहे थे, मैं फर्स्ट टाइम जब मधुबन आया, बाबा थे 80 प्लस एज के और मैं था 30 एज का। फर्स्ट टाइम आया, बाबा को देखा तो वो जो शांति स्तंभ देख रहे हैं वहां एक बैडमिंटन कोर्ट था, तो बाबा को बैडमिंटन कोर्ट देखा तो मैं बाबा को बोला, बाबा चलो बैडमिंटन खेलते हैं। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, ये बूढ़ा बाप को हार्निया है। ये चुप हो गए, एक सेकंड में बाबा बदल गए। बाबा ने कहा, चलो बच्चे खेलेंगे। तो पूरी जी बोले कि बाबा आप तो कह रहे थे हार्निया है, नहीं चलो खेलेंगे, आज बच्चे से बाबा खेलेगा, चलो। तो दोनों जाके खेले। तो पूरी जी कह रहे थे, मैं यंग 30 एज का था, बाबा था 80 प्लस, 3 मैच खेले, बाबा मुझे बुरी तरह से हरा दिए। बाबा ऐसे शटल उठाते थे, कहते लो बच्चे, मारते थे, मैं उठा ही नहीं पाता था। बाबा अंत तक फिट थे बिल्कुल। क्या राज था। एक होता है बीमारी होना, बीमारी का आना, क्योंकि कलयुग में कोई नहीं कह सकता है कि मुझे बीमारी नहीं होगी। जानते हैं, मैं आपको आश्चर्य की बात सुना रहा हूं। 5 साल पहले हमारे चेन्नई में एक प्रोफेसर रामचंद्रन है, वेरी इंटरनेशनल फिगर, रिनाउंड पर्सनालिटी डॉक्टर है। तो हमारे भारत के लगभग 2500 MD फिजिशियन का ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर चेक किया, सर्वे किया। सरप्राइजिंगली मोर देन 50% डॉक्टर्स को ही डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है। फिर आम जनता को कौन बचाएगा? ये संसार में कोई नहीं कह सकता है कि मुझे बीमारी नहीं होगी, क्योंकि जो पी रहे हैं पानी प्रदूषित, जो सांस ले रहे हैं प्रदूषित, जो खा रहे हैं, आजकल क्या क्या मिलावट आप देख रहे हैं। अभी मुझे एक वीडियो किसी ने भेजा, जो डायरी मिल्क कैडबरी चॉकलेट खाते हो आप, वो कैसे बनता है दिखा रहा है। सुअर को लेके पूरा उसको आग में भून के, उसको मशीन में स्लाइस करके, उसका सारे चर्बी निकाल के वो कैडबरीज में डाल रहे हैं। हम खा रहे डायरी मिल्क कैडबरी। आप देख नहीं सकते हो क्या क्या कर रहे हैं दुनिया में लोग, सोच भी नहीं सकते। तो जब सब कुछ प्रदूषित है, कौन यहां जिंदा रह सकता है, ठीक से हेल्दी रह सकता है? लेकिन एक होता है हमारी गलती से खुद बीमारी को इनवाइट करना, कि जितना हो सके हम अपने तरफ से परहेज रखें, फिर भी आ गया तो क्या कर सकता है। तो बाबा को भले डायबिटीज था, लेकिन डायबिटीज बाबा को कुछ भी करना। इसी प्रकार इस संसार में हम बीमारी होते हुए भी बहुत एक सुंदर जीवन जी सकते हैं, बहुत सुंदर जीवन जी सकते हैं। इसका आधार क्या है? वास्तव में व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? कोई व्यक्ति देखने के लिए हट्टा कट्टा मोटा एकदम बहुत हैंडसम गोरा है, ब्यूटीफुल है, तो उसको हेल्दी कहेंगे? नहीं, फिर किसको हेल्दी कहेंगे? अच्छा, शरीर में भले बीमार हो। देखो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संस्थान का कहना है, उसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, इट इज द कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ ए पर्सन एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। किसी को कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति तन से मन से सामाजिक रीति से और आध्यात्मिक रीति से, ये चारों पिलर्स उसका ठीक होना चाहिए, तो ही उसको कंप्लीटली हेल्दी कहेंगे। तन में बीमारी नहीं है कैसे पहचान है? देख के तो नहीं बता सकते हो। हम फिजिकली हेल्दी उसको कहते हैं जो चार पांच घंटा बहुत साउंड स्लिप करता है, अनडिस्टर्ब साउंड स्लिप, अच्छी तरह से नींद करता हूँ। रात को नींद नहीं आ रही है, बार बार तारे गिन रहे हैं, तो हेल्दी नहीं कहेंगे। अनडिस्टर्ब साउंड स्लिप, आराम से सोते हो कंफर्टेबली, जो खाते हो हजम होता है, यू हैव गुड डाइजेशन पावर। भाग दौड़ करके सब कुछ काम कर रहे हो बिना हाँपे, कुछ लोग देखना थोड़ा सा चिड़ी चढ़ने का, उसको फिजिकली हेल्दी थोड़ी कहेंगे। इस प्रकार वेट सही है, आपका हाइट के अनुसार वेट जितना होना चाहिए उतना है, आपका ब्लड प्रेशर सही है, आपका बॉडी टेम्परेचर सही है, तब फिजिकली हेल्दी कहेंगे। इसी प्रकार मन से हेल्दी कौन है, मन से हेल्दी किसको कहेंगे, बहुत खुश रहता है, अच्छा आनंदमय। कुछ लोग ना अपना टेंशन को छुपाने के लिए ऊपर से हंसी करते रहते हैं, ऊपर से। एक हमारी एक बहन सुना रही थी, किसी कॉन्फ्रेंस में कहीं गई थी, तो बहुत सारे ऑडियंस थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, तो एक स्पीकर आया, खाली हंस रहा है हंस रहा है हंस रहा है, कोई ऐसा हंसी की बात ही नहीं है, बोल रहा है लेकिन हंस रहा है, कोई हंसी की बात ही नहीं है लेकिन हंस रहा है। तो ये जो हमारी ब्रह्मा कुमारी बहन उधर अटेंड की थी, वो सुना रही थी, बोली मैं उसको जाके पर्सनली सिर्फ बाद में मिला, कि आप क्यों हंस रहे थे, कारण तो नहीं था, हंस क्यों रहे थे, मुझे ना अंदर से बड़ा टेंशन हो रहा था, मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं उसको छुपाने के लिए हंस रहा था। तो लोग तो बाहर कुछ होते हैं, अंदर कुछ होता है। मन से हेल्दी वो है जिसका अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी का, उत्तरदायित्व का नॉलेज है, अपना फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य बोध है, और मेंटल स्विंग्स नहीं होता है। आप देखना कुछ लोग होते हैं, आप अभी बात कर रहे हो, आपसे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, दो मिनट के बाद आओगे तो देखिए जैसे कि आपको पहचानते ही नहीं। अभी अभी देखे होते हैं, एकदम आपसे देखे बात बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, दो मिनट के बाद रो रहे हैं, मूड अप डाउन होता रहता है, उसको मेंटल स्विंग्स कहते हैं, उसको मानसिक रूप से हेल्दी नहीं है। हर परिस्थिति में हर व्यक्ति को देख के हम उसको कैसे डील करें, इमोशनल इक्विलिब्रियम है, तब कहेंगे मेंटल। आप कहीं किसी के घर में डेथ हो गया, आप गए हो वहां, वहां जाके चुटकुला सुना रहे हो, तो मेंटली हेल्दी कहेंगे। कौन सा परिवेश है, कौन से परिस्थिति है, कौन से व्यक्ति सामने है, उसकी क्या बात करनी है, कैसे करना है, समझ नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो, उसको मेंटली हेल्दी थोड़ी कहेंगे। इस प्रकार सोशल हेल्दी कौन है, जो व्यक्ति सबके साथ मिलजुल के प्रेम प्यार से रहता है, सबको मदद करता है, सबसे मदद लेता है, पर्यावरण का भी ध्यान रखता है। लोग क्या करते हैं, घर में सब झाड़ू करेंगे, सब गंदगी सब रास्ते में नाले में, तो सब करेगा, सब इधर उधर के सब पेड़ पौधे काट देंगे सब। हम जहां रहते हैं उस पर्यावरण का भी ध्यान रखें, सबके साथ मिलजुल के प्रेम प्यार से रहे, उसको कहते हैं सोशल हेल्दी। लेकिन आध्यात्मिक रीति से हेल्दी कौन है दुनिया में कोई नहीं बता सकता। मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी मुझे समझ नहीं था, जब ये ब्रह्मा कुमारी इस वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आया लॉन्ग बैक, इट वॉज इन 86 आई केम टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैं फर्स्ट टाइम जब इधर आया था, ये कुछ नहीं था, हमारे शांतिवन नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, ज्ञान स्वरूप कुछ नहीं था, खाली पांडवन था। हमारी दादी प्रकाश मणि जी को किसने इंट्रोडक्शन दिया कि दादी एक डॉक्टर आया है, तो दादी ने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, आओ 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 डॉक्टर आओ, अभी एक डबल डॉक्टर बनो। मैं बोला डबल डॉक्टर क्या, सुना नहीं था, बोला डबल डॉक्टर क्या होता है दादी, तो दादी ने कहा अभी आप स्पिरिचुअल डॉक्टर भी बनो, शरीर का इलाज तो कर ही रहे हो लेकिन स्पिरिचुअल डॉक्टर भी बनो। तो स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, मैं इस संस्था में जब आया तब पता चला। वास्तव में स्पिरिचुअली हेल्दी किसको कहेंगे, आपने क्या समझा, यहाँ तीन चार दिन हो गया, आप बताइए स्पिरिचुअली हेल्दी किसको कहा जाता है। अच्छा बहुत अच्छी बात है, और बताओ, अच्छी बात है, ठीक बताए, और बताइए। हाँ मन वचन कर्म से जो दूसरों के प्रति सुभावना शुभकामना रखता है, ठीक बात है, और बताओ। स्पिरिचुअली हेल्दी किसको कहेंगे, अच्छा दुनिया में तन मन अच्छे वाले बहुत होते हैं लेकिन आध्यात्मिक रिश्ते नहीं मिलते। सुनिए बहुत सुंदर बात है, स्पिरिचुअली जी अच्छा ठीक है, वो बात भी ठीक है, लेकिन आपने जो बोला थोड़ा थोड़ा बोला, पर्सनल एक मना पार्ट पार्ट बताया, पूरा कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बताया। अच्छा वो भी ठीक बोला, और भी बताओ, मैं आपको बता देता हूँ कुछ बातें। देखिए सुनिए, जो व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझता है, अध्यात्म कहा जाता है, क्या मतलब अध्यात्म कहा जाता है, हम सभी शरीर नहीं है, कौन है आपको तो पक्का हो गया ना, कौन है हम सभी, एक एक आत्मा है। अंकल जी थोड़ा स्ट्रेट बैठे ना, सामने बैठे हैं, देखिए सुनिए, स्ट्रेट होके बैठिए, सुनिए मैं आपको ही सुना रहा हूँ, सबरे सबरे फ्रेश होके बैठिए, अलर्ट होके सब बैठे ना, अच्छा लगेगा कि मैं आपको एक्सरसाइज कर रहा हूँ, थोड़ा लास्ट में करा दूंगा। तो देखिए सभी, हम सभी एक एक आत्मा है, जो व्यक्ति अपने को एक आत्मा समझता है, मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली मैं एक चेतना शक्ति आत्मा हूँ, एक स्पिरिट, एक उसको भिन्न भिन्न नाम दे दिया है, कोई रूह कहता है, कोई सोल कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई स्पिरिट कहता है, मैं आत्मा हूँ। और मेरे पिता कौन है, परमात्मा है। जो अपने आप को आत्मा समझते हुए पिता परमात्मा को याद करता है, सदा विश्व कल्याण की भावना रखता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई की दृष्टि दृष्टि रहती है, वो व्यक्ति सही अर्थ में आध्यात्मिक है। और उसकी निशानी क्या होगी, पॉजिटिव एंड पीसफुल माइंड विथ ए लविंग एंड जेनरस हार्ट इज अ साइन ऑफ ए स्पिरिचुअल मैन। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, इतना बड़ा रुद्राक्ष माला पहन के आया है, इतना बड़ा चीता लगाया है, सफरन कलर का ड्रेस पहना है, उसको आध्यात्मिक नहीं कहा जाता, वो तो रिचुअल से। धर्म किसी ना किसी एक फिलोसफी को लेते हुए, कुछ रिचुअल्स को लेते हुए थोड़े लोगों के अंदर सीमाबद्ध है, परंतु आध्यात्म जिसमें समग्र विश्व का कल्याण हो, जिसमें खाली मनुष्य नहीं, पशु पंछी जानवर पेड़ पौधे सारे प्रकृति का सभी का जिसमें भला हो, कल्याण हो, जिसमें समाहित है, उसको आध्यात्म। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो सदा अपने को आत्मा समझते हुए, पिता परमात्मा की स्मृति में रहते हुए, विश्व कल्याण की भावना रखते हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए, जिसका मन सदा शांत है, सकारात्मक है, जिसका दिल विशाल है, बेहद है, सबके प्रति प्रेम से भरपूर है, ऐसा व्यक्ति को भी आध्यात्मिक रीति से हेल्दी देखना है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक रीति से हेल्दी होगा वो मन से जरूर हेल्दी होगा, उसका मन सदा शांत रहेगा ही। और जो मन से हेल्दी होगा, 90% डिजीजे सारा साइकोसोमैटिक, साइंटिस्ट कहते हैं पहले मन से बीमारी शुरू होती है, फिर आपको टेंशन हो जाए देख लेना, हाइपरटेंशन, हम हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन, जिसका टेंशन हाइपर हो जाता है उसको हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट की बीमारी, हजार बीमारियां आएगी। टेंशन आज अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है 60% डिजीज आर साइकोसोमैटिक ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस आज दुनिया में जितनी बीमारियां देख रहे हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, स्ट्रोक, जितनी भी बीमारियां देख रहे हो, ये सब बीमारियों का जड़ टेंशन है। तो जो आध्यात्मिक रीति से हेल्दी होगा वो टेंशन से मुक्त हो जाएगा, मन सदा शांत रहेगा, और टेंशन से मुक्त हो गया, मन शांत रहा, तो तन भी बीमारी से ठीक हो जाएगा, फिजिकली हेल्दी होगा। और जो व्यक्ति सबके प्रति प्रेम प्यार से रहेगा तो सोशली भी हेल्दी हो जाएगा। सो स्पिरिचुअल हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ कंप्लीट हेल्थ, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। लेकिन लोग आज स्पिरिचुअलिटी क्या है जानते ही नहीं। ब्रह्मा कुमारी त्रिशूर विश्वविद्यालय में हमें ये संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है। लेकिन एक बात है, ये दोनों में से, ये चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जैसे बताया आपने, शरीर को हेल्दी रखने के लिए आप सभी को डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा भोजन करो, गुड न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट लो, डेली एक्सरसाइज। इसी प्रकार मन को भी हेल्दी रखने के लिए दो बातें चाहिए। मन का भोजन क्या है, मन का भोजन हमारे, सभी आंखें खोल करके बैठो, अच्छा नहीं लगता है सवेरे सवेरे, सभी ट्रांस में जैसे गए हैं, सभी खड़े हो जाओ एक मिनट, सभी खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाए एक मिनट, सभी खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाए। तो सुना रहा था कि देखिए, जैसे शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमको बहुत सुंदर डॉक्टर कहते हैं गुड न्यूट्रिशियस डाइट लो, बैलेंस डाइट लो और एक्सरसाइज करो, ठीक इस तरह मन को भी सदा हेल्दी रखने के लिए बाबा हमें सिखाते हैं, बच्चे थॉट्स आर द फूड फॉर द माइंड, आपके मन के लिए भोजन है आपके विचार, आप जैसा सोचोगे ऐसा ही बन जाओगे। आज जीवन में आप जो भी हो, हम जो भी हैं, ये हमारा सोच का ही परिणाम है। मैं अगर डॉक्टर बना हूं तो ये मेरा सोच का ही परिणाम है। मैं मेरे मन में विचार आया कि मैं डॉक्टर बनूं, नहीं तो मुझे इंजीनियरिंग मिला था, मैं मिलिट्री में भी सिलेक्ट हुआ था और भी कुछ मिल रहा था, मतलब नहीं डॉक्टर बनूंगा, जो मन में सोचा ऐसा बना। तो हम आज बिजनेसमैन है, टीचर है, लॉयर है, कोई भी कुछ भी है, जो भी है, ये हमारे जीवन का, हमारा सोच का ही परिणाम है। तो जैसा सोचेंगे ऐसा ही बन जाएंगे। आप देखो बहुत अच्छे अच्छे मन में विचार आता है, आपका चेहरा कैसा दिखता है? अगर कहीं बहुत अच्छी पार्टी में गए हो, महफिल मना रहे हैं सभी, अचानक फोन आ जाता है किसी का डेथ हो गया कुछ नियर डियर के, कैसा होता है चेहरा? तो जैसा सोच होता है ऐसे हमारी स्थिति बन जाती है, अवस्था बन जाती है, ऐसा जीवन हो जाता है, ऐसा भाग्य हो जाता है। तो सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बाजार में जाके कुछ भी लेके खा नहीं देते हो, ऐसे ही हम अपना सोच को भी, आप ट्रक के पीछे लिखा रहता है, आप पढ़े होंगे, जरा सोच के भी सोचो यार साथ जाना है, लिखा रहता है ना, पढ़े होगी नहीं? तो हमारा सोच को भी हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या सोचना है। बाबा हमें सिखाते हैं सदा सकारात्मक, सदा समर्थ, सदा सुखदायी, सदा सबके लिए जो अच्छा हो, अपने लिए भी दूसरों के लिए, ऐसा सोच हो जो कुछ कंस्ट्रक्टिव, सदा कुछ विश्व निर्माण के लिए, सबके लिए भला के लिए, ऐसा कुछ सोच हो। महान वो व्यक्ति है जिसका सोच महान है। तो सोच तो सभी सोचते हैं, लेकिन सारे दिन में क्या क्या सोचते रहते हैं, क्या क्या उल्टे सुलटे 50,000 थॉट्स हमारे ब्रेन में आता है सारे दिन में, 24 घंटे में। लेकिन इसमें ओनली सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच ही हमें अंदर शक्ति जमा करती है, बाकी हम ड्रेन आउट हो जाते हैं सारा दिन में। आप जो थकते हो, वास्तव में कौन थकता है? हम जो सोते हैं कौन सोता है? कौन सोता है? शरीर सोता है। बहुत अच्छी बात है, इसलिए तो बढ़िया कमरा एसी लगा के, बढ़िया गद्दी बिछा के सोते हैं। लेकिन आपका हार्ट सोता है? सोता है? नहीं सोता है, धड़क 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 चालू ही रहता है। अच्छा, क्या आपके फेफड़े सोते हैं? नहीं सोते, वो भी नहीं सोते। किडनी सोता होगा फिर, वो भी नहीं सोता है। ये मशीन तो चालू ही रहता है, लेकिन सोता है मन। आप जानते हैं हमारे ब्रह्मा बाबा को किसने सोया हुआ नहीं देखा? ब्रह्मा बाबा को सोया हुआ नहीं देखा। सभी जो भी आते थे बाबा, सबके पर्सनली रूम में जाके खाना खाए कि नहीं, ठीक से कमल है कि नहीं, सब है कि नहीं, जानते हो? पहले ये मधुबन बहुत छोटा था, हमारे दादियां सुनाती है कि बाबा उन दिनों में कुछ था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, मच्छरदानी, ये सब कुछ नहीं था, गुड नाइट था नहीं। बाबा इतना जो मिट्टी के इतना बड़ा ये इसमें तो कोयला रख के, उसमें आग रख के, उसमें धूप डाल के, हर एक खटिया के नीचे जाके खिड़की बंद करते थे बाबा, और खटिया के नीचे ऐसे करते थे, हाँ मेरे बच्चे कहाँ दूर दूर से आए हैं, इनको मच्छर न काटे। एक एक कमरे में हर एक का बाबा सब देखने के बाद, लास्ट में बाबा का कमरा है वो आधा था, छोटा था, कहते हैं वहां आते थे सोते थे। आज भी वो खटिया है, देखना गांव में जैसा खटिया ऐसा खटिया है, आप जैसा पलंग नहीं है वो, आप देख लेना बाबा सोते थे। और बाबा कभी अंदर से कुंडी नहीं देते थे, खाली पर्दा ऐसा करते थे। और 2 बजे के बाद तो बाबा को किसने सोया हुआ नहीं देखा, 2 बजे के बाद बाबा को किसने सोया हुआ नहीं देखा, बाबा तपस्या करते बैठे। और हमारी मनोहर दादी कहती थी कि हम बच्चे थे, बाबा को छोटेपन से देखते थे, बाबा को 24 घंटा देखते, लेकिन कभी कभी मन में आता था बाबा कैसे सोया है थोड़ा देखते हैं, क्योंकि कई लोग सोते हैं तो तकिया किधर, कमल किधर, खर्राटा लगा के, तो बाबा कैसे सोया है थोड़ा देखते हैं चलो तो सही। तो कहते थे हम दूर वहां से चप्पल उतार देते थे, और बिल्ली जैसा चुपके चुपके आके जैसे पर्दा ऐसा करते थे, बाबा कहते आओ बच्चे, आओ बच्चे, क्या बात है? रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो बाबा जैसे जागती जो, क्योंकि बाबा के मन में सदा अच्छे विचार सबके लिए, कभी उल्टा सुलटा विचार है ही नहीं। तो थकते हैं हम अपने सोच से। आप देखो यहां बैठे हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हो, यहां चार घंटा भी हो जाएगा बैठ जाओगे आप, नहीं उठोगे। लेकिन एकदम बोरिंग देखना, दस मिनट के बाद थक गया यार मैं तो जाता हूं, उठ के भागेंगे। कौन थका, कौन सा तगारी उठा रहे थे क्या इधर? तो थकता है हमारा मन। जिसका विचार अच्छे हैं आप देखना कितना भी कुछ कर ले थकेगा नहीं, बिल्कुल एकदम टायरलेस है। तो जैसे अच्छा भोजन करेंगे तो आपको फिजिकली एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, ऐसे अच्छे विचार आएगा तो मन भी ऐसा थोड़ा पावरफुल एनर्जेटिक सदा। और मेडिटेशन इज अ आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो यहां मेडिटेशन सिखाया जाता है, इट इज फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट। कैसे मन में अच्छे विचार क्रिएट करेंगे वो हमारी बहन ने आपको सिखाया है। नॉर्मली सारा दिन हम क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं, लेकिन बैठ के मन में एक भी कुछ ऐसे संकल्प ना रहे, हमारे मन में एकदम पॉजिटिव एकदम पावरफुल संकल्प हमारे, वो हमें ट्रेनिंग मिल जाती है। जितना अच्छी तरह से ऐसे मेडिटेशन सीखता है जब मन इतना पावरफुल हो जाता है जो चाहे कर सकता है। आप स्वामी विवेकानंद का राजयोग पढ़े हैं, एक किताब लिखे हैं स्वामी विवेकानंद, वास्तव में वो राजयोग है नहीं, क्योंकि राजयोग में दुनिया में तो बाबा ही सिखाते हैं और कोई दुनिया में सिखाते नहीं, वो पतंजलि का ही योग है सारा अष्टांग योग। लेकिन वो किताब में जब पढ़ रहा था उसमें स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, एक योगी आफ्टर मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस एज इफ ही कैन एनगल्फ द एंटायर ओशन, ही कैन शेक द हिमालय। अर्थात ये योगी मेडिटेशन के बाद उसको ऐसा लगता है जैसा सारा समुन्दर को पी जाऊंगा, सारा हिमालय को उठा के फेंक दूंगा, इतने ट्रेमेंडस एनर्जी अनुभव होता है। तो आप यहां मेडिटेशन सीखिए, देखिए कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसा कुछ करूं अभी जाके, एकदम आपके अंदर इतना एनर्जी आ जाएगी, भर जाएगी। अगर मेडिटेशन करने के बाद कब और जाके मैं सोता हूं तो फिर वो मेडिटेशन नहीं है। अच्छी तरह से मन में सोच चलेगा तो इस शरीर का भान ही नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम बॉडीलेस अनुभव करेगा, एकदम लाइट अनुभव। दूसरी बात है मन का एक्सरसाइज क्या है, मन का एक्सरसाइज ही हमारी बहनें यहां सिखाते हैं मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल ड्रिल सिखाते हैं। स्पिरिचुअल ड्रिल कैसे मन को जब चाहो जहां चाहो एकाग्र कर सकते, जैसे आप फिजिकल ड्रिल कैसे करते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पीटी करते हो तो फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हो, ऐसे मन को भी जैसे चाहे ऐसे सोच, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल ड्रिल सिखाया जाता है। तो मन को दुरुस्त रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मन को हेल्दी रखा ना फिर तन भी हेल्दी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहां आप सभी आए हैं तन से मन से दोनों, और आध्यात्मिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से हेल्दी है। जैसे शारीरिक बीमारियां आपको तो पता चलता है, उसको डायबिटीज है, उसको हाई ब्लड प्रेशर है, उसको कैंसर है, उसको बीमारी है, वो तो शारीरिक बीमारी सबको पता है, लेकिन आध्यात्मिक बीमारी कौन सी जानते हो? मैं हमारी दीदी को, दादी को पूछा, दादी स्पिरिचुअल डॉक्टर क्या होता है, मुझे समझ नहीं था। तो दादी कहती है देखो जैसे शरीर को बीमारियां लगती है ऐसे हम सभी की आत्मा को अभी सब बीमारियां लगी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा आलस्य भय बैर विरोध, ये सब क्या है, बीमारियां नहीं है। एक व्यक्ति को गुस्सा आया, एक बम फेंका, लाखों लोग एक ही साथ मर गए। कौन सी बीमारी में लाखों लोग एक ही साथ मर जाते हैं, है कोई बीमारी? कितने लोगों को हार्ट अटैक होगा, कितने लोग मरेंगे, लेकिन एक बम किसी ने गुस्से में फेंक दिया तो कितने लोग एक ही साथ मर जाते हैं। तो शारीरिक बीमारी से ज्यादा खतरनाक गुस्सा नहीं है। आज लोभ के कारण लोग क्या कर रहे हैं आप देखो, सारे खाने पीने में प्लास्टिक का चावल बना रहे हैं, प्लास्टिक का चीनी बना रहे हैं, क्या क्या सोचो तो सही, किस लिए? पैसा, पैसा। अरे भाई पैसा के लिए तुम लोगों को क्या क्या खिला रहे हो, जहर पिला रहे हो, कितनी बीमारियां फैल रही है। तो ये शारीरिक बीमारी से ज्यादा खतरनाक है कि नहीं, सोचो तो सही। आपको पता है आप एक सिगरेट पियेंगे, एक पफ पियेंगे तो आपका हार्ट में आधा घंटा असर रहता है, लेकिन एक बार गुस्सा किया ना 30 दिन तक असर रहता है इसमें, हार्ट में 30 दिन तक। आज अधिकतर लोगों को हार्ट अटैक जो होता है वो कारण देखा जाता है तो गुस्सा, गुस्से में एकदम हार्ट अटैक हो जाता है, तो गुस्सा मौत का कारण नहीं है। तो आत्मा को ये सब बीमारियां जो लगती है इसका इलाज करने वाले दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी इस बीमारी से ग्रसित है, डॉक्टर को भी गुस्सा आ रहा है, डॉक्टर भी सब बीमारियों से एथनिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्रह्मा कुमारी शिक्षा विश्वविद्यालय में सिखाते हैं, जो हमारे अंदर ये सब ना हो, मन सदा शांत रहे, कभी गुस्सा ना आए, कभी हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या ये सारी जो बीमारियां है, ये बीमारियों से मुक्त जो है वो सचमुच आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है। ये सब बीमारियां नहीं होनी चाहिए। जैसे WHO कहता है कोई बीमारियों का ना होना उसको वास्तव में स्वास्थ्य नहीं कहा जाता है। जो व्यक्ति तन मन और आध्यात्मिक और सामाजिक रीति से स्वस्थ है वो स्वस्थ है। इसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी, कोई लोग कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है कि मैं मेरे अंदर लोभ नहीं है, तो भी उसको स्पिरिचुअल हेल्दी नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल हेल्दी वो है जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान है, जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान है, अध्यात्म मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये संसार क्या है, संपूर्ण ज्ञान और सर्व शक्तियों से भरपूर है, आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर है, वो भी स्पिरिचुअल हेल्दी। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में यहां जो बातें सिखाई जाती है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो मेरा सार कहने का तात्पर्य है कि तन और मन का बड़ा गहरा संबंध है। आप फिजिकली अगर भोजन को ठीक नहीं करेंगे तो मन को भी ठीक नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है जैसा अन्न, शेक्सपियर हजारों साल पहले कह के गए हैं, लेट मी नो योर डाइट, आई विल टेल व्हाट यू आर, तुम क्या खाते हो मुझे बता दो, मैं बता दूंगा तुम किस प्रकार का आदमी है। लेट मी नो योर फ्रेंड्स, आई विल टेल व्हाट यू आर, तुम किसके साथ उठते बैठते हो मुझे बता दो, मैं बता दूंगा तुम किस प्रकार का आदमी है। तो जीवन में दो बहुत बड़े शत्रु है हमारे, वो है हमारा अन्न दोष और संग दोष। जब तक हमारे भोजन को ठीक नहीं करेंगे ना, हमारे मन कभी ठीक नहीं हो सकता, तन भी ठीक नहीं होगा, आत्मा भी ठीक नहीं होगा, आप किसी रीति से हेल्दी नहीं रह सकते। इसलिए बाबा हमें शुद्ध सात्विक भोजन खाने के लिए बताया, शुद्ध और सात्विक भोजन। कुछ डॉक्टर आपको कहेंगे थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ा सा ऑकेजनली सोशियली गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि डॉक्टर ही खुद ही पीता है तो कैसे बोलेगा कि नहीं पियो। लेकिन मेरे भाई और बहनों, पॉइजन इज अ पॉइजन, पॉइजन इज अ पॉइजन। ज्यादा पॉइजन पियेंगे तो तुरंत मौत होगा, थोड़ा थोड़ा पॉइजन पियेंगे तो धीरे धीरे मरेंगे स्लो पॉइजन। तो मेरा कहने का मतलब है अल्कोहल इन एनी अमाउंट इज डेंजरस। जो अल्कोहल लेता है उसका ट्राइग्लिसरी, सभी आंखें खोल करके सुनिए ना, आंखें क्यों बंद है सभी के, आंखें खोल करके सुनना होता है। सवेरे सवेरे आदत नहीं है उठने का जल्दी, शायद किसी किसी को तो बहुत अच्छा। देखो हमारे देश के गायन है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, हम सभी जानते हैं लेकिन कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारे भारत का एक कल्चर था, जानते हो, मैं बचपन में हमारे घर में, मैं इतना छोटा था, मेरे पिताजी एकदम अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठा देते थे, 3-4 बजे। मेरे ग्रैंडफादर तो 6 बजे के बाद हमारे घर में कोई सो ही नहीं सकता, इतना डंडा लेकर चप फट सब पूरा समेट दिया जाता था। एक जेनरेशन के अंदर हमारे भारत में बहुत कुछ चेंज आ गया, बहुत कुछ चेंज हो गया। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले तो हमारे घर घर के सामने लिखा रहता था अतिथि देवो भव सुस्वागतम, आजकल घर घर के सामने लिखा रहा है कुत्तों से सावधान, बी अवेयर ऑफ डॉग। दूसरा परिवर्तन क्या आया, पहले हमारे घर में 6 बजे के बाद सभी माताएं खटिया फटिया समेट दिया जाता था, बेडिंग बिस्तर समेट दिया जाता था, आजकल बेडरूम में लगा पड़ा है, जब जितना मर्जी सोते रहो 10 बजे तक आज। तो माँ बाप अगर 8 बजे तक सोते हैं तो बच्चे कितने बजे तक सोएंगे। मैं उल्लासनगर गया था अभी थोड़े दिन पहले, पिछले साल रात को 1:30 बजे पहुंचा ट्रेन से, 1:30 बजे जब पहुंचा टैक्सी लेके सेंटर जा रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया ये दिन का 1:30 बजा कि रात का 1:30 बजा, क्योंकि पानी पूरी भेलपूरी सब दुकान बाजार सब खुला, लोग इतना भीड़ भड़ाका, मैं बोला कि दिन का 1:30 कि रात का 1:30। वहां लोग 4 बजे सोते हैं सवेरे, सब दुकान बाजार बंद करके डिनर करके 4 बजे सोते हैं, दिन में 12 बजे उठते हैं, नहा धो के 1 बजे दुकान खुलता है। और वहां ऐसे आंख बंद करके पत्थर फेंक देंगे, जिसके शरीर में लगेगा ना उसको डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा। घर घर में ऐसा कोई नहीं जिसको ब्लड प्रेशर डायबिटीज नहीं है। तो हमको सबको पता है जल्दी उठना चाहिए, लेकिन हम ऐसा बना दिया। तो ब्रह्मा कुमारी सिस्टर आज जानते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक ये सोने का समय है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आज साइंटिस्ट कहते हैं ये समय जो जागता है उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत एकदम सर्ज कर जाता है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट अटैक होगा, डायबिटीज होगा, सब बीमारियां होगा। इस समय सोने का जो दिन और रात बना है किस लिए? किस लिए? रात को क्या क्या करने के लिए? लेकिन हमारी बॉम्बे ऐसी उल्टी लग रही है, आप देखना, नाम है अंधेरी लेकिन रात को 12 बजे जाओ तो दिन जैसा लगता है। नाम है बांद्रा, एक भी बंदर नहीं है। तो अभी साइंटिस्ट कहते हैं रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक सोना है। जो जागता है, जो अभी जो रिसेंट जनरेशन, करंट जनरेशन के आईटी ग्रुप के जो सारे यंगस्टर्स देखना, रात भर जागते रहते हैं। जानते हैं कल हमारे हॉस्पिटल में एक यंग 28 इयर्स का बच्चा आया, इतना मासिव हार्ट अटैक हो गया, बचा नहीं सके, मर गया 28 इयर्स में। मैं जब मेडिसिन पढ़ता था हमारे प्रोफेसर कहते थे 60 साल के बाद हार्ट अटैक होता है। क्या हो गया जमाना? तो हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। और पहले हमारे भारत में बता रहा था ना, ये एक जनरेशन के अंदर इतना चेंज हो गया। पहले माताएं घर घर में इतना सुंदर खाना बनाते थे, लोग घर में खाना खाते थे और लोटा लेके बाहर जाते थे। आजकल सब होटल में खाते हैं, घर में पूरा उल्लू जैसा जीवन। पहले जमाने में शादी होती थी, ब्याह होता था, कुछ होता था, पर्व पर्वाणी होती थी, तो घर में माताएं बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाती थी और डांस करने वालों को किराए पे बुलाया जाता था, वो डांस करते थे। आजकल खाना पकाने वालों को किराए पे मंगाया जाता था, बनाते हैं और घर की माताएं डांस करती है, डिस्को डांस। जनरेशन ही चेंज हो गया पूरा, इसलिए तो बीमारियां हैं। आप जानते हैं हमारे ब्रह्मा बाबा 80 साल पहले हमारा नियम देखो जाके 3:30 बजे उठना, 4 बजे सभी मेडिटेशन में बैठना, 10 बजे देखना जाए गुड नाइट लिखा है। हमारी परदादी थी बाबा की बेटी, दादी निर्मला संता, कोई भी मीटिंग, कुछ भी, कितनी जरूरी कुछ काम हो, कहते 10 करो बस, 10 करो बस। तो बाबा ने 80 साल पहले जो कहा था आज उसको साइंटिस्ट प्रूव करके बता रहे थे। एक समय था जब साइंटिस्ट कहते थे, मैं पढ़ता था तो कहते थे एनिमल प्रोटीन इज द बेस्ट बायोलॉजिकल प्रोटीन, नॉनवेज खाओ। लेकिन आज वही साइंटिस्ट कह रहे हैं संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, क्योंकि नॉनवेज में इतनी सारी गंदी चीजें हैं, हजार बीमारियां होगी, हजार बीमारियां। मैं बचपन से कभी नॉनवेज टच नहीं किया, मेरा क्या प्रॉब्लम हो गया? दुनिया में कितने बड़े बड़े महापुरुष को ले लो, सब भी शाकाहारी रहे। मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, हमारे इतने बड़े बड़े नाखून नहीं है, इतने बड़े बड़े दांत नहीं है इसको मारने काटने के लिए। आप सोचो तो सही, एक जानवर को हम घर में रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बीमार होता है तो वेटरनरी सर्जन से जाके इलाज कराते हैं, पर एक दिन उसको मार के खा जाएंगे। कोई मरा हुआ जानवर को नहीं खाता है, प्रैक्टिकली मर्डर किया जाता है और खाते हैं। सोचो तो किसी को मारा जाता है, वो बेचारा कितना तड़पता है, उसके अंदर जो निकलता है सारे जो टॉक्सिन्स है वो खून में सर्कुलेट होकर मांस में जाता है, क्या होगा वो सब खाएंगे तो। हमारा बच्चा को कोई किसी घर में रखे, उसको खिलाए पिलाए, अच्छी तरह से पढ़ाए लिखाए और एक दिन मार के खा जाए, हमको कैसा लगेगा? टच भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नॉनवेज बिल्कुल। बाबा इसलिए शुद्ध सात्विक, आप 5 दिन कंप्लीटली नॉनवेज खाली खाइए, खाली नॉनवेज नॉनवेज नॉनवेज, देखना एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। 5 दिन खूब सब्जियां खाओ, देखो एकदम पेट एकदम साफ। आजकल लोग सब्जियां नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, सब जंक फूड फास्ट फूड। इसको फास्ट फूड क्यों कहते जानते हो? पहले जमाने में घर में खाना माताएं कितनी मेहनत करके कितना बढ़िया बढ़िया डिशेज बना देती, आजकल और इतना मेहनत करता है। मैं तो दिल्ली जाके हैरान हो जाता हूँ, संडे का दिन, अरे भाई छुट्टी का दिन है, जो मर्जी बनाओ ना, संडे का दिन रेस्टोरेंट के सामने एक लंबी क्यू, पूरा पोते पोते इतने छोटे छोटे बच्चों के लिए 2 घंटा खड़े होंगे वहां खाने के लिए। क्या हो गया? घर में बनाना नहीं है, बाहर जाके पैसा फास्ट फूड इसलिए कहा जाता है पैसा दे दिया फट से। मैं तो अभी ट्रेन में जाता था पहले, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जहां जाओ लोग घर से टिफिन लाके खोलते थे, खाते थे रोटी सब्जी जो भी है, आजकल एक भी नहीं मिलेगा आपको। स्टेशन आ गया फटाफट उतर के जाके पैसा फेंके फटाफट 4, 8, 10 पुड़िया और 2-4 बोतल लेके आएंगे। कुछ मेहनत करना नहीं है, पैसा फेंको फास्ट मिल गया, फास्ट फाड़ो फास्ट खाओ फास्ट बीमारी फास्ट ऊपर। क्यों खाया ऐसे? आपको पता है एक बर्गर में 10 ग्राम नमक होता है, 10 ग्राम, जबकि सारे दिन में हम 3 ग्राम खाना चाहिए। अभी WHO से एक टीम आए थे, कहते एन एवरेज इंडियन इज कंज्यूमिंग 11 ग्राम ऑफ सॉल्ट। बी केयरफुल माताएं सभी सुनिए, आप कितने नमक खिला रहे हो। दिल्ली में हमारे 50% माताओं को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर। हम नमक एकदम कम खाना चाहिए, तेल घी एकदम कम करना चाहिए। हम ये सब खाने पीने में जब तक बदलाव नहीं लाएंगे कैसे बीमारियों से मुक्त होंगे। तो इसलिए क्या करना है, यहां से जाके यहां जो बाबा ने सिखाया, बाबा को सारा जीवन काल मैं हमारी लच्छू दादी को पूछता था बाबा क्या खाते थे। लच्छू दादी कहती थी बाबा सूखी चपाती 3 से 4 कभी नहीं खाया जिंदगी में, मैंने देखा तो सब्जियां को वैरायटी खाते थे। बच्चे आते थे दूर दूर, उनको खातरी करने के लिए बाबा वैरायटी बनाते थे सबको, क्योंकि ये मेहमान का घर है, आप इतने कभी साल में कभी आएंगे, कितने सालों के बाद आएंगे। हमारे भारतीय ट्रेडिशन है भले हम सूखी रोटी घर में खाएं सब्जी खाएं, लेकिन कोई आता है मेहमान उसके लिए तो दोस्त कुछ बनाना पड़ता है ना। तो बाबा खुश करने के लिए थोड़ा सा टेस्ट कर लेते थे, लेकिन बाबा बहुत माल छाल नहीं खा लेते। एक बार कोई एक VIP आया था, बाबा को देखा लाल लाल गोरा गोरा, ये यहाँ का हेड है संस्था का, तो इसको खूब माल छाल खाने का मिलता होगा सोचा। उसका संकल्प बाबा को तो संकल्प पता चलता था, बाबा ने उनको बोला बच्चे आज बाबा के साथ खाना खाना है। तो खुश हो गया आज कुछ माल छाल मिलेगा, लेकिन बाबा जब बैठे ना करेला की सब्जी सिंगी की सब्जी बस। तो बाबा का भोजन बिल्कुल सिंपल था, सादा भोजन उच्च। आप सिंपल दाल रोटी सब्जी चावल खाओ, देखो आपको कोई बीमारी होगी तो बता देना। तो आज हम सभी ये जीव के पीछे पड़ के कुछ भी खा जाते हैं, इसलिए सब प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें अपना भोजन को ठीक करना है। एडिक्शन नो, एब्सोल्युटली नो, एक बार भी नहीं। ये सब गंदी चीजें बिल्कुल हमारे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट करने लगती है। और डेली एक्सरसाइज क्या करना है वो मैं यहाँ सिखाऊंगा, बाकी मेंटल एक्सरसाइज और मेंटल भोजन क्या तो बहने आपको सिखा ही रहे, ठीक है ना। अभी अब 5 मिनट रह गया, करेंगे एक्सरसाइज, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। मैं अब बैठिए बैठिए पहले बैठिए, अच्छा अच्छा, तो मुझे सोचा कि 8 बजे तक, हाँ करा दूंगा सब, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे 8 बजे तक सोचा, 8:30 तक तो ठीक है, फिर 9 बजे। अच्छा नहीं, 9 बजे तक हॉस्पिटल मुझे जाना है। तो सुनिए, मेरा कहने का भावार्थ है कि यहाँ देखिए, आप यहाँ आए अपने सब कुछ काम धाम छोड़ करके यहाँ आए हैं, यहाँ से कुछ परिवर्तन होके जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन होके जाना है। और आजकल माँ बाप रोल मॉडल हैं बच्चों के लिए, आप जो करोगे ना आपके बच्चे आपको अनुकरण करेंगे, आप नोइंगली अननोइंगली। तो बच्चे तो पशु पंछी जानवर भी पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा किए तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बच्चों को चरित्रवान बनाकर आदर्श बनाकर एक अच्छा इंसान बनाकर अपने पांव में खड़ा कर देना वो हमारा काम है। तो ही हम अपने उत्तरदायित्व को रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, नहीं तो मैं कहूंगा यहाँ आते हैं रिटायर्ड एज के पेरेंट्स आके ऐसे रोते हैं आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे थे पैसा पैसा पैसा, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी के लिए भागे, बच्चा को कौन संभाल रहा है, कौन संभाल रहा है। आजकल दादी दादी कहाँ रहता है, कोई सब अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, आया भाई संभाल रही है, क्या सिखाएगी जानते हैं। रिटायर्ड एज में यंग बच्चे ड्रोगेटिक कैरेक्टरलेस, पैसा मांग रहे हैं माँ बाप को, नहीं देते तो पिटाई, आके रो के कहते हैं कि हमारे बच्चों को मेडिटेशन सिखाओ आध्यात्म। जब बच्चे छोटे थे आपने नेग्लेक्ट किया, मिट्टी जब एकदम नरम होता है आप जैसा शेप देना चाह सकते हो दे सकते हो, हार्ड होने के बाद कुछ नहीं। इसलिए मैं यही कहूंगा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारे जीवन कैसे सुंदर हो, व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन कितना सुंदर हो, यहाँ सीखी जाती है। हम यहाँ आए हैं, आप छुट्टी लेके इतने समय तक यहाँ आए हो, इतने दिन रहे हो, तो यहाँ ऐसा सुंदर बातें सीख के जाओ कि यहाँ से जाने के बाद बॉम्बे में जो देखे आपको कहे ये तो बिल्कुल बदल के आए, बिल्कुल आबू से इनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होके आए हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। मैं सभी को कह रहा हूं अभी समय बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। आप बहुत लेट आए, जो फर्स्ट टाइम आए हैं हाथ उठाए, फर्स्ट टाइमर, अरे बाबा रे बहुत लेट कर दिया आप, बहुत लेट कर दे, ठीक है फिर भी टू लेट नहीं है, अभी भी कुछ कर सकते हो और लास्ट तो फास्ट ले सकते हो। देखिए जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा स्वास्थ्य, क्यों? क्योंकि आपके पास कितने धन संपत्ति, महल माड़ी गाड़ी मोटर कुछ भी हो, लेकिन आप बीमार हो, खटिया में पड़े हो, कुछ खा नहीं सकते हो, देख रहे हो सब गंजे कर रहे हो, कैसा लगेगा जीवन? किसी देश में हर कोई बीमार है, कैसा देश होगा वो देश? इसलिए हमारे महात्मा गांधी नेशनल फादर कह के गए हैं, इट इज द हेल्थ विच इज द रियल वेल्थ, इट इज नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आपके पास कितने सोने चांदी है वो संपत्ति नहीं है, कितने नोट रखे हो संपत्ति नहीं है, नोटबंदी हो जाएगी फिर सोचते रहोगे कहां छिपाऊं क्या करूं। तो सच्ची संपत्ति तो हमारी स्वास्थ्य है, हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, हेल्थ गया तो सब कुछ गया मैं कह सकता हूं। देखिए अगर आध्यात्मिक रीति से भी प्रगति करना चाहते हो आपको अच्छा हेल्थ चाहिए, क्यों? मैं एक सुंदर कहानी सुनाता हूं आपको समझ में आएगा। हमारे देश में ऋषि मुनि जितने भी जो आजकल रामदेव बाबा जो सिखा रहे हैं योगासन, जो भाई जी सिखा रहे थे, किसने सिखाया था? ये रामदेव बाबा ने सिखाया, महर्षि पतंजलि आज से 2000 साल पहले, उससे भी पहले सिखा के गए, कि उनको भी रियलाइजेशन हुआ था कि अगर भगवान को याद भी करना है तो तन ठीक नहीं होगा तो मन लगेगा नहीं भगवान में, हाय हाय करते रहेंगे, गुड हाय मेरे कपर हाय 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 करते रहेंगे, भगवान के मन जाएगा ही नहीं। डायबिटीज के बारे में बोलूंगा मैं, सबसे जानना चाहूंगा यहाँ डायबिटीज कितने भाई बहनों को है, हाथ उठा प्लीज। कितने लोगों को? देखिए आप कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ 10% लोगों को तो है, यहाँ तो 20% से भी ज्यादा होगा, 25% हो जाएगा। तो देखिए आज ऐसा हो गया है डायबिटीज घर घर में, डायबिटीज में अगर किसी को डायबिटीज जो हो रहा है इसका कारण आज इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन WHO का कहना है कि टेंशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, 60% लोगों को डायबिटीज का कारण टेंशन। नेक्स्ट कारण है हमारे खान पान में गड़बड़, हम बहुत खान पान बहुत बिगाड़ दिया। तीसरा कारण है हम अगर मोटे हो गए, खान पान गड़बड़ होना तो ही तो मोटे होते हैं, मोटे हो गए तो आज नहीं तो कल डायबिटीज होना ही है, क्योंकि जो चर्बी है ये हमारी इंसुलिन को काम करने नहीं देता, फिर शुगर बढ़ता है। ओवरवेट हो गए तो डायबिटीज होगा आज नहीं तो कल, सिडेंटरी हो गए, आजकल सबके पास गाड़ी मोटर मोबाइल, जिसके पास मोबाइल है हाथ उठाए, रॉन्ग क्वेश्चन पूछा, किसके पास नहीं है पूछना चाहिए था, या नहीं तो किसके पास दो दो मोबाइल है पूछना चाहिए था। आज हम हमारे पास मोबाइल है इसलिए हम लोग इमोबाइल हो गए, हिलना नहीं डुबला नहीं तो बीमारी नहीं होगी। तो जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको हजार बीमारियां आएगी, हजार बीमारियां। किसी ने बहुत एक साइंटिस्ट ने कहा एक्सरसाइज इज द बेस्ट इंसुलिन सेंसिटाइजर अवेलेबल इन द मार्केट, बेटर देन एनी मेडिकेशन करेंटली अवेलेबल। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको डायबिटीज होगा ही नहीं, आपका बॉडी वेट मेंटेन होकर रहेगा, जैसा चाहो ऐसा बनोगे। लोग हिलते नहीं है डूलते नहीं है तो ब्लड सर्कुलेशन इतना स्लगिश हो जाता है, फिर जो मक्खन घी खाते हो, एक तरफ घी खा लिया, ऐसी कार में बैठा ऐसी हॉल में बैठा, हिलना नहीं डुलना नहीं, जो एटमोस्फेरिक एयर में जम जाता है अंदर क्या होगा, आप घी में उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल दो क्या होगा, तो आप इधर खा लिया घी का कुछ चीजें और फिर कोल्ड ड्रिंक पी लिया, क्या होगा अंदर, हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा। तो आज हम क्या खा रहे हैं, मेरे पास सारे वीडियो है, अब कोल्ड ड्रिंक दिखाऊंगा ना, एक आदमी एक ये लेता है स्कॉर्पियन को लेता है, बिच्छू को, एक बर्तन में रहता है पानी डाल देता है, बिच्छू तैरता रहता है कुछ नहीं होता है, पानी फेंक देता है, उसके ऊपर जैसे ही कोल्ड ड्रिंक डालता है 5 सेकंड के अंदर मर जाता है बिच्छू, 5 सेकंड के अंदर। आप बिच्छू हमको काटता है तो हम मर जाते हैं, और बिच्छू के ऊपर खाली कोल्ड ड्रिंक डाल दिया, पिया भी नहीं, बिच्छू मर गया। तो अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हम क्या पी रहे हैं? अगर उसमें 5 पैसा का भी विटामिन है, मिनरल है, कैल्शियम है, आयरन है तो मुझे बता दो, कुछ भी नहीं, इस तरह खाली जहर पी रहे हैं। जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं हाथ उठाइए, बधाई हो, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पीते हैं, आज से यहां से प्रण करके जाना, प्रतिज्ञा करके जाना कि नहीं टच करना। ये सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट करने की चीज है, छोड़ेंगे? मैं नहीं करता हूं, क्योंकि आपकी मर्जी है, मेरी अर्जी है। मैं आपका भाई हूं, एक डॉक्टर हूं, मैं बता रहा हूं। आप नहीं चाहते हो हेल्दी, तो कोई नहीं चाहता तो भगवान भी कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। तो आप यहां से अच्छी बातें सुन के अपना जीवन को बदलेंगे तो आपको फायदा होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि अगर सारे भारतवासी एक दिन के लिए भी अगर कोल्ड ड्रिंक छोड़ेंगे, हमारे देश में कितना हजार करोड़ों का फायदा होगा। क्यों पिए? हमारे घर में पहले कोई आता था तो दूध पिलाते थे, लस्सी पिलाते थे, छाछ पिलाते थे, कुछ नहीं हो तो नींबू पानी पिलाते थे। आजकल कोई आता है तो कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, जहर है, क्या होगा? नहीं तो चाय पिलाओ। चाय भी हमारे देश में कोई नहीं पीता था, जानते हो? 200 साल पहले हमारे देश में चाय भी कोई नहीं पीता था। अंग्रेज लोगों ने पहले चाय लाके हमारे देश में लोगों को ड्रम ड्रम बना के मुफ्त पिलाए, जैसे एडिक्ट हो गए, फिर बेचना शुरू कर दिया। पहले 2 ब्रांड चाय मिलता था, पता होगा सबको, लिप्टन, ब्रुकबंड। मैं खुद जाके आसाम में चाय फैक्ट्री देखा हूं, एक बार देखोगे ना जिंदगी में नहीं पियोगे चाय। जो बेस्ट क्वालिटी चाय सब विदेश में जाता है, 1 किलो को 1.5 लाख 2 लाख रुपया। यहां जो हमको मिलता है वो 10th ग्रेड में बोलूंगा, 3rd ग्रेड भी नहीं, 10th ग्रेड का चाय मिलता है। मैं चाय कभी नहीं पीता हूं, क्या प्रॉब्लम? चाय के बदले गरम गरम पानी में नींबू आप निचोड़ के नींबू पानी पियो, लेमन टी सोच के पियो। आपको पता है नींबू में फुल ऑफ विटामिन सी, आपके मसूड़े ठीक रहेंगे, आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको कोई भी प्रकार के इन्फेक्शन फट से पकड़ेगा नहीं, आपका वेट लॉस होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है लेमन इज एंटी कैंसरस, आपको कैंसर नहीं होगा। अमेरिका में एक कैंसर इंस्टीट्यूट में रिसर्च करके देखा गया, जो कैंसर की दवाइयां है उससे काफी पोटेंसी है लेमन में। तो नींबू पानी पियो ना, गर्मी के मौसम में ठंडा पानी में बनाओ नींबू पानी, उसमें काली मिर्च डाल दो, जीरा पाउडर डाल दो, थोड़ा सा सिनेमन डालना है डालो, थोड़ा सा शहद डालना, हनी डालना है तो डाल दो फ्लेवर के लिए, इतना अच्छा लगता है। अब जो जूनियर अंबानी, उसका 45 किलो वेट कम किया, 145 किलो की कितना साइज, 110 की कितना किलो कम किया, 100+ किलो कम किया वजन। जो रुजुता दिवेकर, जो उनके डायटिशियन कहती है, कुछ लोग कहते हैं ना डॉक्टर साहब ग्रीन टी पिए, नो ग्रीन, नो रेड, नो येलो, नो ब्लैक, नो टी, नो टी, सीधा कहते हैं। हमारे देश में कोई पीता नहीं था, लक्ष्मीनारायण पियेंगे सतयुग में चाय पियेंगे? अच्छा राम सीता पीते होंगे, फिर कोई चाय नहीं पीता था। हमारे देश में माताएं पहले दूध दही छाछ लस्सी नींबू पानी पिलाते, आजकल घर घर में चाय नहीं तो कोल्ड। ये चेंज कीजिए, यहां से आके आप कुछ परिवर्तन होके जाइए, ना खुद पीना है, ना बच्चों को पिलाना है, ना किसी को देना है, ये सब जहर है, बीमारी से बच नहीं सकते। आपको डायबिटीज है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं भी है, गोल्डन टिप्स में बता रहा हूं, जब तक आप खान पान को ठीक नहीं करो ना, ऊपर से धन्वंतरी भी उतर आएंगे तो आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है, खान पान। मैं अभी इंटरनेशनल एक जर्नल, हेल्थ जर्नल पढ़ रहा था, दुनिया में जो मुख्य बीमारियां उसका कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण था डाइट। हम अगर अपना भोजन को ठीक कर देंगे तो 99% बीमारियां ठीक। तो बाबा हमें यहां जैसे शुद्ध सात्विक भोजन, कम कम खाओ, 4-5 बार खाओ, लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना है। लोग 2 बार खाते हैं, जो 2 बार खाता है वही मोटे होते हैं, क्योंकि 12 घंटे के बाद खाएंगे कितना भूख लगेगी, इतना खाएंगे एकदम फटाफट। कभी भी याद रखना जल्दी जल्दी नहीं खाना, धीरे धीरे चबा के खाओ, कम खाने से पेट भर जाएगा। जो जल्दी जल्दी खाता है, ज्यादा खाता है, शुगर भी शूट कर जाता है, अच्छी तरह से चबा के खाओ। थाली में 50% सब्जियां होनी चाहिए, 50% सब्जियां। लेकिन आजकल जो बाजार में मिलता है, केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे करके भेजते हैं, बहुत ही केयरफुल, लेके अच्छी तरह से उसको गर्म गर्म पानी में उसमें नमक भी दे दो, डाल दो थोड़ा हल्दी भी डाल दो, डूबो के रखो उसमें अच्छी तरह से साफ करके चूल्हे पर निकालो सारा पूरा और बॉइल करके खाओ। कच्चा तो खाना ही नहीं, आपको बहुत लोग कच्चा खाने के लिए कहेंगे, आज कहीं शुद्धता है ही नहीं, कच्चा खाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। मैं बॉम्बे में पढ़ाई किया हूं इसलिए बता रहा हूं, आप दादर जाओ देखना, दादर एरिया में लोग कार से उतरेंगे नहीं, सब्जी मंडी में वहां सब्जी क्या फ्रेश धनिया है, अरे दे 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 दे, ऐसे पैसा 100 रुपया फेंक दे ऐसे, और आप ये धनिया को क्या करते हो, काट के उसके दाल में सब्जी में सब ऊपर फेंक दो, है ना। नहीं मैं हॉस्पिटल में देखा हूँ, नानावटी हॉस्पिटल में, मैं एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं पहले वहां बॉम्बे में एनेस्थेसिया पीजी किया था टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट से। तो हमारे हॉस्पिटल में आते थे बहुत लोग, पेट दर्द पेट दर्द पेट दर्द, उसको सोनोग्राफी करो, सीटी स्कैन करो, कुछ नहीं निकलता था, खूब पेट दर्द पेट दर्द पेट दर्द, क्या करे। सर्जन कहते थे उसको थोड़ा खोल के देखें, तो ओटी टेबल में जाके जैसे खोलते थे इतने बड़े बड़े केचुआ राउंड वार्म, ट्यू 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 ट्यू, हजारों केचुआ निकलते थे, मुंह से निकल रहे, नाक से निकल रहे, पेट से निकल रहे केचुआ, इतना बड़े बड़े। फ्रेश धनिया खा, वो धनिया कहां बनता है जानते हो, धनिया सारा पूरा ट्रेन के जो कीचड़ जहाँ पूरा वहाँ झोपड़पट्टी में रहने वाले वो सारा धनिया उगाते हैं, और आप सब्जी मंडी से कहते हैं वाह क्या फ्रेश धनिया। पालक भी सब है, मैं बता रहा हूँ, इसलिए अच्छी तरह से धुलाई करो, गरम गरम पानी में अच्छी तरह से धुलाई कर दो, धो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, अच्छी तरह से धुलाई करो। कच्चा खाओगे तो 100% बीमारियां होगी, मैं नहीं, गर्म पानी में धुलाई करो तो जर्म फर्म जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम है आजकल, इतनी सारी बीमारियां हो रही है ये सब के लिए, आप सोच भी नहीं सकते कितनी सारी बीमारियां, क्या क्या बताऊं सारा ये सब खाके, ये सब तो होता है, जर्म्स पूरा दिमाग तो भी जाता है, ब्रेन में सब बीमारी भी हो जाती है, जर्म्स ब्रेन तक भी चले जाते हैं, तो इसलिए आजकल कच्चा बिल्कुल नहीं खाना है। मैं बता रहा हूँ, कोई कुछ भी बोले, मैं देखता हूँ कैसे कितना प्रॉब्लम। ब्रेड देखो, ब्रेड दो प्रकार का आता है, एक व्हाइट ब्रेड ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड कभी नहीं खाना, वो मैदा का चीजें हैं, मैदा खाएंगे तो एकदम शुगर शूट कर जाता है। व्हाइट ब्राउन ब्रेड आप घर में बना सकते हो, आजकल ब्रेड बनाने का मशीन भी आता है, ब्राउन ब्रेड खा सकते हो, लेकिन खाली ब्रेड खाएंगे तो भी शुगर बढ़ेगा, उसमें खूब सब्जियां डालो, खूब सब्जियां डाले सैंडविच बना के खाओ। आपको देखिए गोल्डन प्रिंसिपल बताता हूँ खान पान के बारे में, आपको 5 बार खाना है, 10 बातें याद करो, 5 बार खाना है, सवेरे 9 बजे तक नाश्ता हो जाना चाहिए, रात को 9 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए, दिन में 1-2 बजे तक लंच होना चाहिए। यहां जैसे पांडव भवन में कैसा नियम देख लो, बाबा 80 साल पहले ये नियम बनाए, आज साइंटिस्ट इसको प्रूव करके बता रहे, सवेरे 9 बजे तक नाश्ता, शाम को रात को 9 बजे तक डिनर, और दोपहर को 1-2 बजे लंच, 3 मेजर मील्स तो सभी को खाना, लेकिन बीच में लंबे समय तक खाली पेट रहने से फिर डायबिटीज में जो दवाइयां आप खाते हो 24 घंटा काम करता है, शुगर लो हो जाता है, इसलिए 4 घंटे के बाद तो कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो आपको मिड मॉर्निंग में 11-12 बजे कोई ना कोई फल खाओ, आजकल फल भी डेंजरस है, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह से धुलाई करो, छिलका निकालो, आजकल कार्बाइड सोल्यूशन में डुबो देते हैं, चाइना से इथिलीन आता है उसमें डुबो देते हैं, कच्चा लेके आते हैं डुबो देते हैं, 4 घंटे में पूरा पीला हो जाता है, खाएंगे तो कोई टेस्ट नहीं होती, कोई अगर देखते हैं तो अच्छी तरह से साफ करो, आजकल तो इंजेक्शन देते, कोई बच ही नहीं सकता, इसलिए तो बोला मैं जितना हो सके देखिए कहीं भी तो फल कोई ना कोई सीजन का फल खाओ, 4-5 बजे इवनिंग में कुछ ना कुछ हल्का स्नैक्स ले सकते हो, जैसे भुना हुआ चना है या भुना हुआ सोयाबीन है, कि भेलपुरी बना के खाओ, या कोई चना चाट बना के खाओ, कोई परी बनाओ, वेजिटेबल सूप बनाओ, टमाटर सूप बनाओ, थोड़ा सा रात को सोते समय इतना दूध, सवेरे नाश्ते के साथ दही ले लो एक कटोरी, लंच में छाछ बनाओ, बटर मिल्क बनाओ 2-3 ग्लास पियो, रात को दूध इतना दो, मलाई निकाल दे, जल्दी रहे। खाने पीने में 50% तक सब्जियां होनी चाहिए, कम से कम तेल बनेगा, मुझे पता है बहुत सारे हमारी माताओं का प्यार तेल घी से बहता है, जितना कम हो सके उतना अच्छा, जितना कम हो सके, क्योंकि हमारे भारत में 4-4 गुना तेल और नमक खा रहे हैं, इसलिए मोटे होते जा रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल सब बीमारियां शुरू हो गया, दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक भारत में, सबसे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर भारत में, डायबिटीज में भी हम टॉपर बनने जा रहे हैं, दुर्भाग्य है मैं कहूंगा, हमारे देश में किसी को बीमारियां थी नहीं। सुना है कभी सीता जी को हाई ब्लड प्रेशर था, राम जी को डायबिटीज था, लक्ष्मी जी को थायराइड की बीमारी थी? सुने हो कभी? हमारे देश में किसी को कोई बीमारी नहीं। आज हम सभी गलत जीवन शैली के कारण इसे बीमारी। मैं जब पढ़ रहा था डायबिटीज में 100 में से एक को था, आजकल सिटी में जाओ हर तीसरा चौथा बढ़ेगा। आने वाले समय में एक भी नहीं बचेगा कोई, मैं बता रहा हूं, हम अगर नहीं चेंज होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम चेंज होके जाए तो 5 बार खाना है, 5 चीजें छोड़नी है, जितना कम हो सके। चीनी जितना कम हो सके, गुड़ जितना कम हो सके। कई लोग कहते हैं चीनी गुड़ खाओ, गुड़ में भी उतना ही शुगर बढ़ेगा। चीनी गुड़ नमक जितना कम हो सके, तेल तली हुई जितना कम हो सके, और बेकरी प्रोडक्ट, रिफाइंड बेकरी प्रोडक्ट, मैदा की चीजें, ये सब चीजें जितना कम हो सके। 5 क्या क्या होता है? चीनी, गुड़, नमक, तेल, घी और बाहर की बाजार की चीजें। मैं कहता हूं दाल रोटी खाओ, कभी नहीं सुना होगा बर्गर पिज्जा खाओ, प्रभु के गुण गाओ, सुना कभी? तो घर में माताएं घर में प्यार से भोजन बनाओ, देखो कितना सुंदर जी। हाँ, वो चाइनीज के सारे बाहर की चीजें, इसलिए बोला ना, बाहर की चीजें कुछ भी नहीं खाना, कोई भी कुछ भी नहीं खाना, बाहर की चीजें टच नहीं करना है, बिल्कुल कुछ छपी नहीं है। मैं बता रहा हूं ना क्या क्या डाल रहे हैं आजकल, तो खान पान में ये बदलाव। दूसरी बात है, 3 बातें मैं मुख्य बातें बताऊंगा, एक खान पान में बदलाव, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा मेडिटेशन, टेंशन फ्री जीवन। ये 3 बातें अगर ध्यान रखेंगे, यहां से सीख के जाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। चौथा, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना। अगर आज ही जाके चेक करो, जिनके घर में मिक्सी है हाथ उठाओ थोड़ा, वाह, वॉशिंग मशीन, अच्छा वेइंग मशीन, वेट मापने का मशीन, देखा आधा हो गया। सबके घर में वेट मापने का मशीन होना चाहिए, लेकिन खाली रखने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, हर हफ्ता चेक करना है। हर हफ्ता चेक करते हैं? बहुत बिरला कोई करता होगा। हर हफ्ता चेक करना है, देखना है मेरा कितना बड़ा, क्योंकि 2 महीने के बाद देखा, अरे बाप रे मेरा 10 किलो बढ़ गया ना, फिर क्या करोगे? हर हफ्ता चेक करोगे तो एक आधा किलो भी बढ़ रहा है, तो खान पान पर ही करो। डेली देखने से कुछ नहीं होगा, डेली देखे वो तो कैजुअल हो जाएगा, फिर हफ्ते में देखो। बॉडी वेट जितना हाइट है सेंटीमीटर, उसमें 100 माइनस कर दो, जितना रहा उतना किलो होना चाहिए। 5 फुट है तो 150 सेंटीमीटर हुआ, 100 माइनस कर दिया तो 50 किलो मैक्सिमम। बहनों के लिए तो 45 होना चाहिए, आपको 5 किलो हम कंसेशन दे देते हैं। तो आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करेंगे तो आपको बिल्कुल ये सब नहीं होगा। दूसरी बात है, आप एक्सेस ऑफ चाय कॉफी ये सब चीजें बिल्कुल नहीं। लोग दिन दिन एक कप चाय छोड़ेंगे तो साल में 5 किलो वेट कम होगा, 5 किलो वेट कम होगा। इसलिए चाय छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं पियो तो बहुत अच्छा है। उसके बदले गरम गरम लेमन वाटर पियो ना, बहुत अच्छा, देखना कितना अच्छा होगा। छाछ पियो, सूप पियो, मैं बोला ना, नो ग्रीन, नो येलो, नो रेड, नो टी, नो टी, कोई जरूरत नहीं। एडिक्शन है आपको, चाय नहीं पीने से फ्रेश नहीं लगेगा, चाय नहीं पीने से कॉन्स्टिपेशन होगा, चाय नहीं पीने से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को, हेडेक होगा, चिंतित है। चाय क्या करता है, हमारे ब्रेन के जो नस है वो नस को खोल देता है, थोड़ा समय ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, आपको फ्रेश लगेगा, थोड़े समय के बाद फिर सिकुड़ जाएगा, फिर चाय पीएंगे, फिर फ्रेश लगेगा, फिर थोड़े देर फिर ट्यू। इसके बदले एक सिंपल एक्सरसाइज करोगे तो आपको एकदम फ्रेश रहेगा। करेंगे सभी? करेंगे? वेरी सिंपल एक्सरसाइज, हमारे ऋषि मुनि हमको सिखा के गए थे, जो लास्ट में आपने किया। सभी स्ट्रेट होके बैठे, ऐसे आराम से नहीं, स्ट्रेट होके बैठे, इरेक्ट होके। आप देखना, आप कभी हांपेंगे भी नहीं, थोड़े समय होते वो भी नहीं होगा, देखना। हमारे जो सांस लेते हैं ये हमारे लंग्स में, हम 250 की 300 ml लेते हैं, जो नॉर्मली सांस लेते हैं 250 की 300, लेकिन जब ये लंग्स की कैपेसिटी 2.5 लीटर है, अर्थात 10 गुना फुला सकते हैं उसको। जो व्यक्ति कभी लंबा सांस नहीं लेता है ना, कुछ एज के बाद वो सिकुड़ जाता है, फिर जरूरत पड़ता है तो फूलता नहीं है, फिर लगता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने हमको सिखा के गए थे कि लंबा सांस लेके ओम ध्वनि करो। तो आप कभी भी आपको सुस्ती लगती है, 5 बार कर लो, आपके अगर सुस्ती नहीं मिट जाएगी मुझे बता देना, क्योंकि लंबा सांस लेके जब ओम करते हो ब्रेन को इतना ऑक्सीजन मिलता है कि आपको फ्रेश लगता है, अभी करेंगे सभी, एक लंबा सांस लेंगे, एक लंबा सांस,
शांति, और एक बार ओ
सवेरे 5 बार, शाम को 5 बार, देखना आपका छाती ऐसा फूल जाएगा कभी हांपेंगे नहीं, कभी भी कहीं बैठे हो आपको सुस्ती लगती है, चाय थोड़ा पियो, नहीं चाय पीना, उसमें 5 बार ओम ध्वनि करो, लेकिन ऑफिस में बैठे हो ओम करोगे तो क्या हुआ बोलेंगे सब लोग, तो ऑफिस में ऐसा नहीं करना है, ऑफिस में बैठ के लंबा सांस लेना छोड़ना, लंबा सांस लेना छोड़ना, लंबा सांस ले 10 बार करो तो देखो फ्रेश हो जाओगे, थोड़ा सा उठ के जाके बाहर जाके लंबा सांस लो, छोड़ो लंबा सांस लो, जरूरत ही नहीं है, मैं कभी चाय नहीं पीता हूँ, सूती लग रही, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, लंबा लंबा सांस ले, अकेले हो, घर में हो, ओम ध्वनि उच्चारण करो, कोई बात नहीं, ठीक है, करेंगे सभी, सिंपल टिक्स हमारे पूर्वज बता के गए थे, जो आसन प्राणायाम आदि सिखा के गए थे, उन दिनों में कोई हेल्थ क्लब नहीं था, जिम खाना नहीं था, इसलिए वो सब सिखा के गए थे ताकि हम हेल्दी रहे, लेकिन धीरे धीरे भूल गए, फिर रामदेव बाबा ने फिर से हमें सिखाया, लेकिन हमारे ब्रह्मा बाबा, हमारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं तुम माता ये सब कहाँ, शीर्षासन, पद्मासन, मुर्गासन, बकरासन कहाँ से कर पाओगे, ये सब होगा नहीं, इसलिए मैं आपको सिंपल एक्सरसाइज सिखाता हूँ, आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना, मैं हम वहाँ एक्सरसाइज फॉर हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफ, बहुत सुंदर 2 DVD बनाया हूँ, जिसमें उसमें सब कुछ आ जाता है, एरोबिक, एनरोबिक, एक्यूप्रेशर, वार्म अप, स्ट्रेच अप, बॉडी मसाज, सब कुछ उसमें है, क्लबिंग, कंप्लीट एक्सरसाइज, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको होलिस्टिक एक्सरसाइज में कहते हैं, जो माताएं घर में बैठते हैं क्राम्स होता है, पेन होता है, खड़े नहीं होते, 7 दिन के अंदर एकदम डांस करके जाता है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आता है डांस करके जाता है, सिखाता हूँ, आप वो वीडियो लेके घर में कर सकते हो, वेरी सिंपल, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आज साइंटिस्ट कहते हैं सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है यस वॉकिंग, लेकिन इट इज नॉट द कंप्लीट एक्सरसाइज, क्योंकि आप जब चल रहे हो, जब आप चल रहे हो देखना आपका हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, कुछ लोग आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब हाथ नहीं उठता है, हाथ नहीं कैसे उठेगा, जिंदगी भर हाथ ऐसा किया नहीं, आजकल ग्रर कपड़े धुल गया, ग्रर कपड़े सूख भी गया, पहले कपड़े तो ऐसा करके सुखाते थे माताएं, आजकल वो भी नहीं करना पड़ता है, तो फिर थोड़े साल के बाद आगे डॉक्टर साहब हाथ नहीं उठता है, तो मैं जो ऐसे इसलिए वॉकिंग में आपका हाथ मूवमेंट नहीं हो रहा है, दूसरी बात आपके ये साइड मसल यूज नहीं हो रहा है, ये पीछे मसल यूज नहीं हो रहा है, आप घुटना मोड़ भी नहीं रहे हो, इसलिए मैं वॉकिंग योगा सिखाता हूँ, वॉकिंग योगा, पहले जमाने में हमारे ऋषि मुनि सवेरे सवेरे प्रातः भ्रमण करते थे भगवान को याद करके, योगा मीन्स इट इज नॉट रिलेटेड टू बॉडी, पतंजलि ने जो हमको सिखाया था योगासन, योगा फॉर मेंटल हेल्थ, मन से परमात्मा को याद करने का नाम योग है, और शारीरिक एक्सरसाइज करने से तन ठीक होगा और मन से परमात्मा को याद करने से मन ठीक होगा, इसलिए धीरे धीरे लोग योग तो भूल गए और वो तोड़ना मोड़ना शरीर को उसको योगा समझते हैं, वो योगा है ही नहीं, वो आसन है, तो वॉकिंग योगा मैं आपको एक बहुत सुंदर बनाया हूँ वीडियो, आधा घंटा का, पसीने में लत्तर पत्र हो जाओगे पूरा एकदम, और कुछ करने की जरूरत नहीं, घर में इतने एरिया में आप कर सकते हैं, वेरी सिंपल, यहाँ सोफा है चेयर है नहीं तो आप सिखा सकता है इधर, लेकिन आप लेके आप सीढ़ी लेके घर में बजाओ और खुद करो, आधा घंटा डेली करो, देखो आपको क्या फायदा होता है, मुझे इतनी दुआएं देते हैं सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में, बहुत जगह कंट्री में ये सब कर रहे हैं, तो आप आराम से कर सकते हो, अभी मैं आपको सिंपल और 5 मिनट रह गया सिंपल एक एक्सरसाइज कराऊंगा जो आपका थाई मसल स्ट्रांग होगा, मेडिटेशन तो यहाँ सिखाते ही है, लेकिन मेडिटेशन कैसे करना है, योग का प्रयोग बाबा कहते हैं, देखो जैसे सूर्य ऊपर है, सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल रही है, लेकिन जिसके पास एक लेंस होता है को सौर शक्ति को एकाग्र करके नीचे कुछ भी जला देता है, ठीक इसी तरह हम परमात्मा दयालु कृपालु हैं, उनकी असीम किरणें चारों तरफ बरस रही है, लेकिन जो मन को एकाग्र करके परमात्मा से उस शक्ति को कैच करता है और उसको प्रयोग करता है शरीर में, वो हीलिंग हो जाती है, तो बीमारियां ठीक हो जाती है, कितनी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो उसको कैसे करना है, यहाँ सीखिए अच्छी तरह से मेडिटेशन। आज मैं आपको अभी थोड़ा एक्सरसाइज करा दूंगा, ठीक है, लास्ट में 2 मिनट फिर मेडिटेशन करके सब खड़े यहाँ पे जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। अच्छा, पीछे वाले देख रहे हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है शायद, एक मिनट बैठिए, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं खड़े हो जाएंगे तो। मैं कैसे करता हूँ आपको देखेंगे, इसको थोड़ा देखिए क्या करना है आपको, सिंपल एक्सरसाइज है। आपको एक बहुत सुंदर गीत के साथ आपको ये एक्सरसाइज कराऊंगा, वो गीत के धुन है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो कैसे चलना है देखो, सिंपल, आप जहां खड़े हो, जहां खड़े हो पहला स्टेप है, देखो क्या करना है, ये पांव को ऐसे लेके टच करके ले आना, ये पांव को लेके ऐसे टच करके ले आना, ऐसे ऐसा नहीं करना, खड़ा इधर रहना है लेकिन ये उंगली को टच करके ऐसे ले आना, ये उंगली को टच करके ले आना, एक दो, इसमें क्या होगा देखो, ये थाई मसल स्ट्रांग हो रहा है, आपका बॉडी का बैलेंस होगा। दूसरा स्टेप है एडी को आगे लेके टच करना, देखो एडी को ऐसा टच करके ले आना, पूरा पांव ऐसा नहीं, खाली एडी टच होगा, टच एंड कम बैक, एक दो। तीसरा स्टेप है पांव को पीछे लेना, टच करके ले आना, ठीक है। नेक्स्ट कदम है पांव को ऐसे उठाना, सांस छोड़ के जितना हो सके पांव को ऐसे उठाना। नेक्स्ट है मिलिट्री मैन जैसा लेफ्ट राइट चल रहा है, ठीक है। अभी खड़े हो जाए, 5 मिनट मेरे साथ करना है ना, मेरे साथ करना है अभी, मेरे संग संग चल रहे मेरे पास भी है, इधर सबके पास है, बहुत अच्छी बात है ना, सबके पास है, बहुत अच्छी बात है।
हॉस्पिटल में
तो होने होने आप पकड़ लेंगे तो ठीक है।
बाबा मेरा मन बहलाते हैं बाबा।
आप इतने भी एक्सरसाइज करेंगे देखना पसीने में लतर पतर हो जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल में एक्सरसाइज फॉर कंप्लीट हेल्थ का जो सीडी मिलता है, दो डीवीडीज है, आप घर में लेके सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, इतना ही करो मैं जो करता हूं, आप देखिए एकदम पूरा बॉडी वेट ठीक हो जाएगा, आपके सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन खान पान में ठीक नहीं करेंगे, कितना भी एक्सरसाइज करो कोई काम नहीं, कितना भी एक्सरसाइज करो खान पान ठीक नहीं होगा तो हेल्थ ठीक नहीं होगा, खान पान कितना भी अच्छा करो एक्सरसाइज नहीं करो तो भी ठीक नहीं होगा, दोनों ठीक करना जरूरी है। और साथ में रोज आधा घंटा समय निकाल के बाबा को याद करना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से बाबा को याद करो, देखो फिर एकदम मन गदगद हो जाएगा, मन ठीक होगा तो तन ठीक होगा। अभी एक सुंदर गीत बजाऊंगा, सभी गाएंगे, गीत गाना भी मेडिटेशन है, योग है। जब बाबा के गीत को गुनगुनाते हो, घर में खाना पकाते हो, कुछ करते हो, कुछ भी कर रहे हो, गीत बजता रहे घर में, देखना मन परमात्मा में ऑटोमेटिकली, व्यर्थ बातों से ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएगी। तो अभी एक सुंदर गीत बजाऊंगा जी। एक्सरसाइज हमेशा खाली पेट करना, हल्का सा कुछ खा के कर सकते हो लेकिन पूरा फुल पेट करके कभी नहीं, नाश्ते से पहले करो, रात को भी शाम को भी खाने से पहले, ठीक है, इतना पानी पी सकते हो, हल्का सा नाश्ता कुछ कर सकते हो लेकिन पेट भर के कभी नहीं खाना, तुरंत खा सकते हो, खाने पीने का कोई ये नहीं, तुरंत खा सकते हो, ठीक है, ओके। चलो एक बहुत सुंदर गीत बजाता हूं, सभी गीत के साथ गाएंगे ना, बहुत एक सुंदर गीत है बाबा की, बहुत सुंदर गीत है ये, पक्का करके जाना यहाँ से।
बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वही, मेरे तो सिर्फ बाबा, एक दूसरे ना कोई।
याद है तिरोई,
मेरे तो सिर्फ बाबा,
एक दूसरे ना कोई, मेरे तो सिर्फ बाबा, एक दूसरे ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी हो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी हो ही, मेरे तो सिर्फ बाबा, एक दूसरे ना कोई। मेरे तो सिर्फ बाबा, एक दूसरे ना कोई।
सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है ताली बजाना, सारे शरीर का एक्यूप्रेशर हो जाता है, ताली बजाने के लिए कंजूस नहीं बनना है, ताल के साथ, ताल के साथ, जल्दी जल्दी नहीं। किसके साथ?
एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है,
एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है,
इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है।
दिल के और नजर न आता है।
माता पिता शिक्षक सदगुरु,
माता पिता शिक्षक सदगुरु, बंधु सुख सदोई मेरे सचिव बाबा, एक दूसरो ना कोई। मेरे सचिव बाबा एक दूसरो ना कोई।
सबका चेहरा मुरझा हुआ जैसा दिख रहा है, थोड़ा हंसते हुए खिला हुआ चेहरा दिखाई देना चाहिए।
उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है,
आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है।
आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है,
उसी को पाने की खातिर थी,
उसी को पाने की युगों से किया रोई। मेरे सचिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे सचिव बाबा एक दूसरो ना कोई।
थोड़ा खुशी खुशी से ताली बजाओ, खुशी खुशी से।
मेरा सुख
उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं,
उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं।
मैं है सिंधु की, मैं लहरों में,
मैं है सिंधु की, मैं लहरों में रहती खोई खोई। मेरे सचिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे सचिव बाबा एक दूसरो कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वही। मेरे सचिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे सचिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे सचिव बाबा एक दूसरो ना कोई।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दीदी से सुनिए।
पिछले गलत में तो ठीक है, पर तो ये गलत में मैं 40 साल से आपके संपर्क में, एकदम मत है। आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कैसा लगा, आप सभी को कैसा लगा? हाँ, तो फिर इनको बाबे में निमंत्रण देके बुलावे, बाबे कोला बाबे आपको हार्दिक निमंत्रण है, तो आप जरूर आइए। आप सबको ट्रेनिंग दो, जैसे यहाँ शुगर का कैंप रखते हैं, तो ऐसे वहाँ भी हम कैंप का प्रोग्राम रखू। और कभी आप ये बोलेंगे तो मैं नया चीज का खास कैंप रखूंगी, तो डेट बता और वो भाई डायबिटीज का कैंप रखेंगे। ओके, वैसे भी हम करते रहते हैं परंतु आप जैसे करते हैं ना तो उधर और उधर में फर्क। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।
बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बॉम्बे में मैं पढ़ाई किया हूँ तो बॉम्बे जैसा अपना घर जैसा लगता है। बॉम्बे से भाई बहने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार से कोई आए। बहुत अच्छा लगा सर भाई बहने मिलके। लेकिन जो अभी दुनिया में जो परिस्थिति है मैं बता रहा हूँ, घर घर में ऐसी बीमारी है, लोगों की हालत तो आप देखते नहीं हो, हम तो रोज देखते हैं लोगों की कहानी, आप सुनते हैं इतना दुख होता है। मेरे भाई और बहनों आप आए हो, अच्छे जीवन शैली बनाओ, जीवन में स्वस्थ रहो तो ही जीवन का मजा है, नहीं तो क्या फायदा है बताओ। तो दीदी तो निमंत्रण दिए हैं, जरूर आएंगे। वहां मैं दो दिन करता हूँ, 8-8 घंटा प्रोग्राम होता है, सवेरे 4 घंटा शाम को 4 घंटा, कोई भी नहीं उठ के जाता है। पहला जब बॉम्बे में प्रोग्राम किया, पूना में क्या कहते 8 घंटा, हमारे यहाँ लोग तो 1 घंटा भी नहीं बैठेंगे। मैं बोला आप देख लेना 8 घंटा क्या, 12 घंटा हुआ उठ के जाने के लिए कोई तैयार नहीं तो जीवन में जो जरूरी बातें बाबा हमें सिखाते हैं वही बातें सबको शेयर करता हूँ, इसलिए बहुत अच्छा। फिर मिलेंगे, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, सदा खुश रहो, उड़ते रहो।
ओम शांति। बाबा देख रहो, बाबा बोलते थे, बाबा को सभी पूछते थे आप सोते क्यों नहीं है, तो कहते शुभ बाबा सोते हैं जब मैं सो। तो इसी तरह शरीर को हम सुनते हैं तब आत्मा हमको संयोग करती है, ये कोई गम्मत है।
एक्चुअली आप जितना जितना आपका लाइफस्टाइल चेंज होता रहेगा आपकी नींद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, एकदम लाइट रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। खटिया में गए, ओम शांति गुड नाइट, जैसे उठेंगे एकदम फ्रेश रहेगा। लेकिन अचानक नहीं होगा, ब्रह्मा बाबा नहीं सोते थे, मैं भी नहीं सोऊंगा, बीमार हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। धीरे 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 देखना लाइफस्टाइल ऐसा हो जाएगा, एकदम देखना लाइट जैसे उड़ रहे हो, फरिश्ता जैसा लगेगा। ओके, थैंक यू।